Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari Om. Hari Om. Kathayam Piyusham Pravachana Kalayam Chapatutam Sulekhe Laletyam Lasati Kilayasya Kshititale Smarami Pratastam Bhavajaladibhitaika Sharanam Akhandanandam Shri Guru Varama Brahma Paramam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jai Mudirain Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Guru Ratmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavat Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namah Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranata Kleshanashaya Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Hari Om Narayan 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 Nama Mantra Yatascho Deti Suryostam Yatra Chagachati Tam Deva Sarve Arpitas Tadunatyeti Kashyano Etadvaitat. वेदांत में रहस्यवाद नहीं है। बोले आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यहां तो जो दिख रहा है उसी को परमात्मा के रूप में ग्रहण करना है। दो ही चीजें दिखती हैं, एक तो यह के रूप में और एक मैं के रूप में। तो मैं तो परमात्मा की बुद्धि इसलिए नहीं होती कि अपने में जीवत्व की भ्रांति हो रही है, और यह मैं इसलिए परमात्मा की बुद्धि नहीं होती क्योंकि उसमें परिवर्तन, मृत्यु ये सब लगा हुआ है। तो दोनों ही तरफ से इसकी समस्या है। ना वो यह को परमात्मा मानने को तैयार है और ना मैं को परमात्मा मानने को तैयार है, इसलिए वो वह को परमात्मा मानता है। माने कहीं बैठा हुआ है परमात्मा सातवें आसमान पे और किसी लोक लोकांतर में बैठा है, और वहां से फिर हमको आएगा, दर्शन देगा इत्यादि इत्यादि। तो वेदांत ये कहता है कि भाई जब जो चीज सामने है, आए नाग न पूजिए बमही पूजन जाए, नाग देवता जब घर पे आए तब तो पूजा नहीं, और फिर उसकी बांबी ढूंढते फिरते हैं कि उसको ही नाग पंचमी को उसको पूज लें। तो जब यह और मैं दो रूपों में परमात्मा तुम्हारे सामने है ही, तो वह के पीछे क्यों पड़ते हो? वह तो परोक्ष है। मतलब ये नहीं कह रहे कि वह परमात्मा नहीं है, अभी आगे श्लोक आएगा कि वह भी परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का जो साक्षात्कार है, दर्शन है, वो या तो यह में होगा या मैं में होगा। परोक्ष वस्तु भी जब दर्शन के विषय बनेगी तो या तो यह के रूप से बनेगी और या तो मैं के रूप से बनेगी। इस समय मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं है यहां, तो वो परोक्ष है। बोले भाई वो फलाने साहब आए नहीं, कि हां जरा लेट आते हैं, अब आ गए। तो जब तक नहीं आए थे तब तक तो वो वह थे, और जब आ गए तब वो यह हो गए, और मैं तो मैं ही रहा नारायण। तो ये यह और मैं जो है ये तो हमेशा रहते हैं, मैं का विषय यह है, और वह जो है वो परोक्षतया ज्ञात होता है, और फिर वो या तो यह के रूप में अनुभव होता है या तो मैं के रूप में अनुभव होता है। तो ये अब तक जो मंत्र हुए हैं उसमें सब मैं और यह के रूप में ही परमात्मा को देखने का विधान उपनिषद करता रहा है। अब और एक प्रकार से बताते हैं, बोले ये सूर्य भगवान आपको रोजाना दिखते हैं, तो बोले चलो समुद्र पर जाकर खड़े होंगे, सूर्य छिपने का नजारा देखेंगे। अब वो सूर्य छिपता हुआ दिखता है, तो असल में सूर्य छिपता है क्या? अब आजकल तो कोई भी मानने को तैयार नहीं, पहले तो ऐसा ही मानते थे कि सूर्य छिपता है और सूर्य उदय होता है। तो कहते हैं ये सूर्य के उदय और अस्त को मत देखो, ये उदय हुआ तो कहां से उदय हुआ और अस्त हुआ तो कहां जाके अस्त हुआ, उस स्थान को देखो, उस कारण को देखो जिसमें जाकर के ये उदय और अस्त होता है, बस वही परमात्मा है। अब लगाओ हिसाब कहां जाकर के उदय होता है और कहां जाकर के अस्त होता है। तो बोले अपनी जगह रहता हुआ ही आकाश में कभी लोप हो जाता है और कभी प्रकट हो जाता है, यही उदय अस्त है। जैसे आप सुषुप्ति में सो जाते हो तो सूर्य अस्त हो गया, ज्ञान सूर्य जो है वो अस्त हो गया, और जैसे ही जागृत हुई तैसे ही फिर उदय हो गया। लेकिन ये ज्ञान सूर्य माने बुद्धि में जो आया हुआ ज्ञान है उसको हम ज्ञान सूर्य बोल रहे हैं। तो बुद्धि में आया हुआ जो ज्ञान है ये कहां जाके अस्त हुआ था, माने बुद्धि कहां जाकर के लीन हुई थी? तो सुषुप्ति में आत्मा में ही जाकर के लीन हुई थी, और जब जागृत हुई तब कहां से निकल पड़ी? बोले जहां जाकर लीन हुई थी वहीं से निकल पड़ी। तो आत्मा में से ही ये ज्ञान सूर्य माने बुद्धि, बुद्धिस्त ज्ञान जो है आत्मा में से ही उदय होता है और आत्मा में ही अस्त होता है। ये बाहर का जो सूर्य है ये अधिभूत सूर्य है, तो ये आकाश में इसका लोप होता है और आकाश में इसका प्राकट्य होता है। आकाश भी ज्योंका त्यों रहता है और सूर्य भी ज्योंका त्यों रहता है, बस हमारी नजर जो है माने वो नजर में ओझल हो गया तो अस्त हो गया सूर्य, और नजर में आ गया तो प्रकट हो गया, इतना ही फर्क पड़ता है। तो बोले भाई जब होता होगा तभी तो नजर में आता होगा। नहीं, आप अभ्यास डाल लो तो आपको सपना भी सूर्य के उदय और अस्त का आने लगेगा। बोले हम वहां गए माउंट पर किसी पे, वहां भी सूर्य का देखने का उदय अस्त का देखने का नजारा होता है। तो अब वहां का सपना आ गया, तो वहां खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हुआ। अरे वहां आदिभौतिक सूर्य ही नहीं था, आदिभौतिक सूर्य भी वहां प्रकट हो गया, उदय भी हुआ माने प्रकट भी हुआ, अस्त भी हुआ अर्थात लीन भी हुआ, और फिर जब आंख खुली तो कुछ भी नहीं था नारायण, सब आपा ही था। कुछ भी नहीं था माने सब आपा ही था। ऐसे ही ये जो आदिभौतिक सूर्य है ये भी आत्मा ही है, ये जाकर के आत्मा में ही लय होता है, आत्मा में से ही उदय होता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यही है सुषुप्ति और जागृत। ये बुद्धिस्त सूर्य जो है, बुद्धि का जो देवता है उसको सूर्य बोलते हैं। एक तो आंख का देवता सूर्य है और एक बुद्धि का देवता भी सूर्य है। ये जो गायत्री उपासना है ना, ये तो बुद्धि की उपासना है ना, तो उसमें सूर्य की ही उपासना की जाती है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, तो सूर्य की ही उपासना की जाती है वहां। तो ये ज्ञान सूर्य जो है ये बुद्धि में बैठा रहता है, ये आध्यात्मिक सूर्य है। और एक है सूर्य देवता, वो आधिदैविक सूर्य है। अर्घ किसको देते हो आप? भौतिक सूर्य को। एक संप्रदाय है, नाम ले देते हैं कोई बात नहीं, अब तो बहुत पुराना पड़ गया, आर्य समाज है। तो उसमें ये सनातन धर्मियों की जो सूर्य को अर्घ देने की प्रथा है, इसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं परंतु आप सूर्य को जल दो तो वो भाप बन के उड़ेगा और वो क्या नाम है बादल बनेगा और फिर वो बरसेगा, तो थोड़ा थोड़ा जल सब डालेंगे तो बादल बनने में आसानी होगी। वो ऐसा उसका भौतिक रूप जो है वो बताते हैं। चलो वो भी मान लिया, ठीक है। लेकिन अपने सनातन धर्म की जो पद्धति है उसमें हम आधि भौतिक सूर्य को जल नहीं देते हैं, आधिदैविक सूर्य को जल देते हैं। अब जैसे आप पितरों को जल देते हैं श्राद्ध पक्ष में तो देते ही हैं, वैसे जो संध्या वंदन करते हैं वो नित्य भी देते हैं। तो पितरों को जो आप जल देते हो नारायण, तो वो पितरों को कौन से पितरों को देते हो? जो आपके सन्मुख नहीं है, और वो उन्हें पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है इसकी बात छोड़ो, लेकिन आपने अर्पित कर दिया। ऐसे ही ये जो सूर्य के प्रति अर्पण का भाव है, बस यही मुख्य है। इसमें जल देना जो है ये उपासना का अंग है। जो लोग सुबह उठ करके सूर्य का दर्शन नहीं करते, वो धर्म का पालन तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि से भी वंचित रह जाते हैं। ये साक्षात नारायण का स्वरूप अगर देखना हो तो ये सूर्य भगवान ही है, बने बनाए। वो चतुर्भुज रूप तो जो है जब आपको दिखाई देंगे तभी दिखाई देंगे, ये रोजाना दिखाई पड़ते हैं ना। और ऐसा विधान है कि चतुर्भुज नारायण का की उपासना सूर्य मंडल में स्थित करा के तब करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, सब जितने भी देवी देवता हैं सबके आभा मंडल होता है, प्रकाश निकलता हुआ रहता है, तो वो प्रकाश प्रतीकात्मक है सूर्य का। जिस देवता की उपासना करनी हो उसी की स्थापना कर लो सूर्य में, वही सूर्य नारायण का रूप हो जाता है। अब जैसे मेरा यह शरीर है, लेकिन इसमें जो ये मैनाम की वस्तु बैठी हुई है, ये इसका अधिदैव जीव जिसको बोलते हैं, ये जीव तो है अधिदैव, और ये शरीर जो है ये है इस अधिदैव का अधिभूत। तो ऐसे ही ये जो सूर्य मंडल है, इसके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, जीव बैठा हुआ है, उसको सूर्य नारायण बोलते हैं। तो अर्घ तो उसको दिया जाता है, अद्भुत को अर्घ नहीं दिया जाता है। जब प्यासे होकर के आपके पास आवे तब उन्हें जल पिला देना, बाकी तो नित्य प्रति उन्हें जल समर्पित किया जाता है। सब देवताओं को जल समर्पित करते हैं, तो सूर्य देवता की भी उपासना है, उनको भी जल समर्पित करते हैं। तो रोजाना सुबह सूर्य का दर्शन अवश्य करना चाहिए और उन्हें नारायण समझ करके प्रणाम करना चाहिए। वैसे भी सूर्य भी अदिति के पुत्र हैं और नारायण जो है विष्णु वामन रूप से, वो भी अदिति के ही पुत्र हुए, तो ये भाई भाई भी हैं आपस में, तो घनिष्ठ संबंध है। एक कोई चित्रकार थे, तो बड़ा अच्छा चित्र बनाते थे, तो एक ने पूछा कि आप हमेशा सूर्य के अस्त होने का ही क्यों चित्र बनाते हो, कभी उदय होने का चित्र क्यों नहीं बनाते? बोले मैंने कभी उदय होते हुए सूर्य को देखा ही नहीं। जब खिड़की में से सूर्य आ जाता है तब तो मैं उठता हूं नारायण। तो जो लोग जल्दी नहीं उठते हैं वो सूर्योदय का कहां दर्शन कर सकते हैं। और जो गायत्री की उपासना का विधान है वो प्रातः उषा काल में जब सूर्य उगने वाले हो तब विधान है। दोपहर को सूर्य जब बिल्कुल चांद पे हो तब गायत्री का विधान है। शाम को जब अस्त हो रहे हो तब पश्चिम की ओर मुंह करके बैठो और गायत्री जपो। तो ये क्या है, ये सूर्याभिमुख सारी साधना है। दो ही हमारे सनातन धर्म में दो ही मुख्य हैं, एक अग्नि और एक सूर्य। महिलाओं के लिए चंद्रमा है, तो सूर्य और चंद्रमा एक ही बात है। चंद्रमा चूंकि मन का प्रतीक है, मन का अधिदेवता है, और महिलाएं जो हैं वो मनः प्रधान होती हैं और पुरुष जो है वो बुद्धि प्रधान होता है। इसका उल्टा अर्थ मत लगा लेना कि महिलाओं में बुद्धि नहीं होती, प्रधानता की बात है, बुद्धि तो सब में होती है। तो इसलिए महिलाओं के जितने भी त्योहार हैं वो सब चंद्रमा से गाइडेड हैं और पुरुषों के लिए सूर्य का की उपासना है। ब्रह्मचारियों के लिए तो सूर्य की ही उपासना है, उसी में चाहे तुम नारायण की उपासना कर लो चाहे कुछ भी कर लो। तो कहते हैं यतः च उदयति सूर्यः, जहां से ये सूर्य उदय होता है, आत्मा से, परमात्मा से, आकाश में से, और सूर्यो अस्तम यत्र, और जहां पर के ये सूर्य जाकर के अस्त्र हो जाता है, यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पिता, उसी आत्मा में सारे देवता जो हैं वो अर्पित हैं। ये देवता कौन से हैं भाई? आपके शरीर में कितने देवता हैं? गाय के शरीर में तो सब मानते हैं कि इतने देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं। वो 33 के 33 करोड़ आपके शरीर में भी हैं, गाय में तो है ही, आपके शरीर में भी हैं। ये जितने भी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, प्राण है, जिनकी इनकी वृत्तियां हैं, सबकी गिनती करो नारायण, तो मुख्य मुख्य कैटेगरी जो है वो 33 ही बनती हैं देवताओं की। कोटि माने तो प्रकार होता है, कैटेगरी का कोटि है, तो 33 कोटि हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क जी महाराज समझाते हैं कि देवता कितने हैं, बोले 33। कौन कौन से? कि 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु, 12 और 11 23 और 8 31 और एक इंद्र और एक प्रजापति, ये 33 देवता हैं। अब इनका संक्षेप करो। फिर बोले, फिर पूछता है वो कि देवता कितने हैं, तो बोले कि 12, फिर कह दिया 11, फिर कह दिया 5, फिर कह दिया 4, फिर कह दिया 3, फिर कह दिया 2, फिर कह दिया 1.5, फिर कह दिया 1। असल में तो एक ही देवता है, उसी को आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर जो कुछ भी कहना चाहो, एक ही महादेव हैं, उसी में सारे देवता समर्पित हैं। ये कल आया था ना, आदित्य देवतामयी, सारे देवता जो हैं ये अदिति की संतान है। अदिति माने हिरण्यगर्भ, अदिति माने सूत्रात्मा, प्राणात्मा, ये सब अदिति है, इन्हीं की संतान सारे देवता हैं। और वो सारे देवता आपके और हमारे सबके शरीरों में विद्यमान है और इस शरीर को चला रहे हैं। हम वैकुम में नहीं रहता कोई भी, समष्टि के साथ एक रह करके ही सब लोग रहते हैं। अच्छा, आपकी हवा और समष्टि की हवा अलग अलग है क्या? मालूम ये पड़ती है कि हमारी सांस अलग है और आपकी सांस अलग है। सबकी सांस एक ही है नारायण, सबका आकाश एक है, सबका जल एक है, सबकी पृथ्वी एक है, समष्टि के साथ एक हुए बिना आप रह नहीं सकते। बोले साहब सुबह को घूमना चाहिए। अरे अच्छा क्यों घूमना चाहिए भाई? मजे में सो। तो बोले कि नहीं, वो सुबह घूमोगे तो आप समष्टि जो प्राणवायु है उसके साथ आपका संपर्क होगा, व्यष्टि जो है वो पोषित होगा। यहां तक कि शाम को घूमने का भी मना किया है, पैर सीधे करने हों वो बात दूसरी है, लेकिन बगीचे में शाम को नहीं घूमना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि उस समय समष्टि में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता रहती है, तो आप वहां घूमोगे तो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भीतर घुसेगी, ऑक्सीजन नहीं घुसेगी। तो समष्टि के साथ एक होकर के रहना। तो तम देवा सर्वे अर्पिता, ये आंख के देवता, कान के देवता, प्राण के देवता, जितने ये शरीर में देवता हैं, ये सब के सब उसी आत्मा के प्रति अर्पित हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक आदमी के मान लो 33 नौकर हों। बोले अच्छा भाई तुम जो है कोका कोला लाना, तुम भोजन लाना, तुम पानी लाना, तुम फलानी चीज लाना सबको। अब वो जो कुछ भी लाएंगे वो अर्पित किसको करेंगे? जिसको अर्पित किए जाते हैं उसी की मुख्यता होती है। तो ये जितने भी देवता ये शरीर में काम कर रहे हैं, ये एक कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए हम ये हविष डाल रहे हैं? तो महाराष्ट्र तो कहते हैं कि यहां ये कस्मै नहीं है, एकस्मै है, एक का लोप हो गया। एकस्मै देवाय हविषा विधेम, एक ही देवता है जिसको ये सब देवता लोग अपने अपनी थालियों में हविष लेकर के प्रस्तुत होते हैं। आंख कहती है बीजे महाराज रूप देखिए, कान कहता है कि महाराज आप शब्द सुनिए, ऐसे ही प्रत्येक देवता अपना अपना भोजन, अपना अपना विषय जो है वो आत्मा को प्रस्तुत करते हैं। तो अपने को इतना हीन बनाने की क्या जरूरत है कि हम आंख पर निर्भर हैं कि कान पर निर्भर हैं? अरे ये सब हमारे लिए हैं, हम इनके लिए नहीं है। तम देवा सर्वे अर्पिता तदुनात्येति कश्चन, उस आत्मदेव का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो भाष्यकार लिखते हैं तदुनात्येति न अतीत्य तदात्मकताम तत् अन्यत्वम गच्छति कश्चन, आत्मा से अलग होकर के कोई अपनी सत्ता ही सिद्ध नहीं कर सकता है। अब ये तो नारायण हमारे यहां की जो परंपराएं हैं, धर्म की जितनी परंपराएं हैं, वो सभी इसका रहस्य और आधार जो है ये वेदांत दर्शन ही है। तो अब कहने को तो कह देते हैं, चलो बात बोल ही देते हैं। स्त्रियां जो हैं उनका नंबर हमारे शास्त्रीय परंपरा में एक पे है कि दो पे है? तो देखने में तो ये लगता है कि पुरुष के अधीन है नारायण, तो लेकिन वो नंबर एक पे ही है, क्योंकि असल में तो पुरुष ही उसके अधीन है। वो कोई मेजर प्रॉब्लम्स में पुरुष की चल जाती हो, नहीं तो बाकी तो सब में महिलाओं की ही चलती है। और ये ठीक भी है, वो शक्ति है। तो उससे अलग रह करके, अच्छा तलाक हो गया मान लो पति पत्नी में, तो उस समय तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो जो आपको सोशल सिक्योरिटी मिली हुई थी कि आप कौन है कि मिसेस फलाना है, तो वो जो सोशल सिक्योरिटी महिलाओं को मिल जाती है सिर्फ माला जयमाला डाल देने से, सारी जिंदगी की सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है ना, उससे वंचित हो गए। तलाक तो हो गया लेकिन उससे वंचित हो गए। फिर जब अलग हो जाते हैं तब पता चलता है कि अरे इससे तो पहले ही अच्छा था, मगर अब क्या हो सकता है, अब कोर्ट में दूसरी अर्जी थोड़ी दी जाएगी। तो हमारे यहां सारे सूर्य और अग्नि को साक्षी देकर के सब काम होते हैं, इसलिए उसमें तलाक का विधान नहीं था। अब जिसके सामने हमने हाथ पकड़ा, अब उसके सामने फिर हम कैसे छोड़ दें उसको, उसी के सामने छोड़ दें? तो शास्त्र ने कहा कि हां, बस एक ही है काम जब छोड़ सकते हो, परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है। उसमें भी बंधन लगा दिया, नारायण आप शास्त्र पढ़ो तुम मालूम पड़ेगी, जब तक पत्नी की आज्ञा न हो तब तक कोई पति संन्यास नहीं ले सकता। अब पत्नी क्यों आज्ञा देगी भाई? लेकिन ऐसी होती हैं जो कहती हैं अरे हमसे कुछ नहीं होता है, आप ही कर लो, चलो अच्छा। तो न अत्यति कश्चन, उससे अलग रह करके किसी की सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। सारी सिक्योरिटी जो है वो इस अहम को लेकर के ही सब देवताओं में रहती है। एतद वही तत्, उसी वही आत्मा है नचकेता जिसको तैने पूछा था। यदेवेह तदमूत्र यदमूत्र तदन्वहि मृत्यो स मृत्युमापनोति य इह नानेव पश्यति। अब एक प्रश्न नचकेता ने और भी पूछा था, पूछने का ढंग उसका असल में गलत हो गया। क्या पूछा था उसने? जो धर्म से परे हो, अधर्म से परे हो, कार्य से परे हो, कारण से परे हो, जैसे माने कि कार्य में परमात्मा है ही नहीं, कारण में परमात्मा है ही नहीं, धर्म में परमात्मा है ही नहीं, अधर्म में परमात्मा है। धर्म तो अधर्म तो धर्म का ही एक पक्ष है ना, विपरीत पक्ष अधर्म है,